ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திர மந்திர 3.
யஸ்யைவ ஸ்புரணம் சதாத்ம கமஸத் கல்பார்த்தகம் பாஸ்தே சாக்ஷாத் தத் த்வமசீதி வேத வச்சசா யோ போத யாத்யாஶ்ரிதா யத் சாக்ஷாத் கரணாத் பவேன் புனரா
ூத்தவோ தஸ்மை ஸ்ரீகுருமூர்த்தயே நம ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தயே
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நமைதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. இஸ்கே ஊபர் ஹம் கல் சர்ச்சா கர் ரஹே தே. மந்திர 3 கே ஊபர் ஹம்னே காஃபி சீஜ் கா ஜிக்ர கியா. கல் அந்த மே ஹம் சமஜ் ரஹே தே லக்ஷணா சக்தி கே 3 பிரகார், और उसी प्रकार को तीनों को आज दोहराई देंगे. नंबर 1 है जिसको कहते हैं जहत लक्षणा, फिर देखेंगे अजहत लक्षणा, फिर देखेंगे जहत अजहत लक्षणा, जिसको भाग त्याग लक्षणा भी कहा जाता है. तो देखिए जहत लक्षणा, ये महावाक्य को समझने के प्रकार के बारे में मैंने कल बताया था कि कोई भी जब सुनते हैं कोई शब्द तो उसके दो अर्थ निकलते हैं, एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है. तो जहत लक्षणा के द्वारा जो कुछ भी वाचन किया जाता है, पढ़ने के बाद में, वाचन के बाद में एक सामान्य अर्थ हमारे मन में होता है. कल दो मैंने दृष्टांत दिए थे कि स्वामी जी का प्रवचन बाम है, बोर है, तो बोर तो वाच्यार्थ में तो फल हो जाएगा मगर वो अर्थ नहीं है. तो देखिए जहत लक्षण है, इसके द्वारा वाच्यार्थ जो है उसका सूचित अन्य अर्थ ग्रहण करना है और वाच्यार्थ को त्याग देना है. त्यागने की जो बात है उसको कहते हैं जहत, जहत लक्षण. यहां पर एक दृष्टांत देते हैं, शास्त्र में बहुत प्रचलित है. गंगायाम घोष, मतलब गंगा में घोष, मतलब गौओं का क्या है वहां पर, गौ जहां रखते ना बांधते हैं ना गौशाला, तो गंगा में गौशाला है. तो गंगा में गौशाला है ऐसा जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे मन में आता है, अरे क्या पानी के अंदर थोड़ी गौशाला होती. मगर वाचार्थ वाचन करने से पढ़ने से तो ये अर्थ, यही अर्थ मिलता है कि गंगा में गौशाला है, मगर ये अर्थ बैठता नहीं है. मगर वाचार्थ तो यही होगा, उसका लक्ष्यार्थ अलग होगा. जैसे पूर्व वाक्य था उसमें क्या था, प्रवचन बोर है, तो मतलब कंटाला, फटीक, बोर्डम की इफेक्ट करने वाला है, जचने वाला नहीं, मजा नहीं आती. तो लक्ष्यार्थ वो होता है मगर वाच्यार्थ ऐसा नहीं है. तो जो वाच्यार्थ ठीक नहीं है उसका क्या करना, त्याग देना है. वाच्यार्थ का त्याग करना है और उसके संबंध में ठीक बैठने वाला दूसरा जो अर्थ है उसका स्वीकार करना है। गंगायाम घोष, तो गंगा में गौशाला है, तो क्या पानी भी थोड़ी गौशाला हो सकती है? नहीं, तो निकालो उसको। फिर दूसरा अर्थ लाना है, क्या? गंगा नदी के किनारे पर गौशाला है। हाँ, अब अर्थ ठीक बैठता है। तो जहत लक्षणा के द्वारा क्या करना है? त्यागना है। किसका? वाच्यार्थ का त्याग कर देना है और जो लक्षार्थ है उसका स्वीकार करना है। अब अजहत लक्षण, उसमें क्या करना है? तो जहत का मतलब तो आप समझ गए, त्याग, उसके आगे अ लगा दिया, अजहत, तो त्याग नहीं करना है। अजहत मतलब त्याग नहीं करना है, अजहत। वाच्यार्थ है उसका त्याग नहीं करना है, वाच्यार्थ रहने देना है और उसमें कुछ जोड़ना है, ठीक है? तो दूसरा दर्शन शास्त्र देते हैं, श्वेतो धावती, श्वेत मतलब सफेद, सफेद दौड़ता है। बस क्या कुछ समझ में आने वाली बात नहीं? वाच्यार्थ में सफेद दौड़ता ऐसा पड़ा तो बंद नहीं बैठता है। तो इस मगर अजहद लक्षणा में त्यागना कुछ नहीं है, उसमें तुमने त्याग दिया गंगायाम घोष, क्यों? पानी में नहीं हो सकता, उसका अर्थ त्याग दिया, फिर दूसरा अर्थ लाए, पर यहां त्यागना नहीं है, वो रहने देना है। तो श्वेतो धावती, उसको हटाना नहीं है मगर कुछ जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया, सफेद घोड़ा दौड़ता है। हाँ, अब बात समझ में आती है। तो वाचार का त्याग नहीं करना है और संबंधित जो है, सूचित तो जो अर्थ है, गर्भित तो जो अर्थ है, उसको जोड़ना है, तो अर्थ ठीक बैठता है। हाँ, श्वेत सफेद नहीं दौड़ता है, सफेद घोड़ा दौड़ता है। तो ऐसा अर्थ करेंगे तो हमारी समझ में आता है। इंग्लिश में कहते हैं कि रीड इन बिटवीन लाइन्स, गुजराती में कहते हैं अध्यार होता है, जो अध्यार हो एने लाविन मुकवान। तो दो प्रकार है, जहत लक्षणा अजहत लक्षणा, मगर महावाक्य समझने के लिए, तत्त्वमसि समझने के लिए दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, जहत अजहत लक्षण दोनों का। तो क्या होता है मैं समझाता हूं। ऐसा है, जहत और अजहत, त्याग करना भी है और दूसरा लाना भी, ऐसा। तो जो वाच्यार्थ विरोधी है उसका त्याग करना है और जो अविरोधी है उसका स्वीकार करना है। अब मैं समझाऊंगा तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। आप में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे को जानता हो, कोई जानता भी हो, कोई मेरे को 40 साल पहले कोई मिला हो तो है, कोई नहीं है। समझ लो, एक वृद्ध है सज्जन, 40 साल पहले, 45 साल पहले मुझे कहीं मिले थे। शास्त्र में अच्छा दृष्टांत देते हैं और शास्त्र तो कहता है सोयम देवदत्त सह अयम देवदत्त। मर समझो कि एक आदमी यहां बैठा है श्रोता, उसकी उम्र 90 साल की है, वो मेरे को 45 साल पहले मिला था। कहां मिला था? अहमदाबाद में मिला था, उसके लड़के को कॉलेज में छोड़ने आया था, मैं प्रोफेसर था। समझो बात, तो कहां मिला था मुझे? अहमदाबाद में। कितने साल पहले? 40 साल पहले। तो देखो अभी 12 चल रहा है ना, 40 साल निकाल दो, कितने है? कौन सा साल आएगा? 1972। अब 72-71 लगा लो, तो वो आज प्रवचन में आके बैठा है मेरे सामने और वो बाजू वाले को बोलता है ये वही है कौन? मेरे छोकरे को जब एडमिशन देने के लिए कॉलेज में ले गया था ना, तो ये सूट बूट टाई वाई पहन के ये जो प्रवचन करने वाला वही है। हाँ, कौन सा? ये वो है, कौन सा? 1971 के अंदर अहमदाबाद के देश में और 71 नाम के काल में सूटेड बूटेड कटेड होके कॉलेज में ये लेक्चर दे रहा था। आज 2012 के अंदर गेरवे कपड़े पहनकर दाढ़ी बाड़ी लंबी करके सन्यासी बन के मेरे सामने बैठा है। दैट दाउ आर, तू ते छे अथवा ते तू छे, तत वह तम तू है। देखिए तो जहत अजहत दोनों लक्षणा का प्रयोग करना है। जो विरोधी है ना उसको निकाल दो। 1971 और आज क्या है 2012, विरोधी है ना वो काल निकाल दो। अब स्थल निकाल दो, वो अहमदाबाद स्थल और ये बंबई विरोध है ना, निकाल दो। तो जो विरोधी है उसको निकाल दिया, अब क्या बचा? जो अविरोधी है वो बच गया। ए जो सूटेड बूटेड कटेड था प्रोफेसर ने और जो गिरवे कपड़े में बैठा है वो तो एक ही है, अविरोधी है। तो अविरोधी है उसका स्वीकार कर लो। समझ में आती बात? भाग और त्याग दोनों को मिला दिया। व्यक्ति कॉमन है, जो सूट बूट पहन के बैठा था वो और ये गिरवे वस्त्र में है वो, व्यक्ति तो एक ही है। तो दोनों का वेश निकाल दो, सूटेड बूटेड कटेड और ये भगवा कपड़ा है उसको निकाल दो। तो विरोधी को निकाल दिया तो अंदर जो व्यक्ति है कपड़े वेश बदल के बैठने वाला वो तो एक ही है। इन द सेम वे जब कहा गया जो सत है चित है आनंद है अजन्मा है वह तू जो अपने को जन्मने वाला मरने वाला परिवर्तनशील कर्ता भोक्ता योनियों में भटकने वाला मानता है, दो विरोध हो गया उसको निकाल दो तो ये तो एक ही है। हे वह ब्रह्म है वो ही तू है, अपने को तू जीव मानने वाला तू वह है। तो तत् त्वम असी, असी पद दोनों का समन्वय करता है। तो ऐसे क्या करना है? जहत अजहत लक्षणा के द्वारा तत्व ज्ञान को ऋषि मुनि हमारे वेद और शास्त्र समझाते हैं। तो देखिए वाच्यार्थ में विरोधी हैं उनका त्याग करना है और लक्षार्थ में जो अविरोधी है उसका स्वीकार करना है। ऐसे करने से महावाक्य का रहस्य हमें पता चलता है। तदपद लक्षार्थ ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और त्वम पद लक्षार्थ सच्चिदानंद, दोनों एक ही हैं, अविरोधी हैं। इसलिए उसका हमने जहत अजहत लक्षणा के द्वारा स्वीकार कर लिया और हमने समझा कि दोनों में समानाधिकरण है और इसलिए वो जोश को हम जीव मानते थे कि मैं करता हूं भोगता हूं बार बार जन्म लेने वाला हूं अनेक जीवनों में भ्रमण करने वाला हूं वो मैं नहीं हूं, मैं तो वह है जो सच्चिदानंद या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वही हूं। इस तरह से महावाक्य का उपदेश दिया जाता है। अंत में निष्कर्ष बता देता हूं। तत्त्वमसि महावाक्य अंदर सत्पद वह तत्पद है, उसका वाच्यार्थ क्या है? ईश्वर। ठीक है, अब देखिए विरोध कैसे मैं समझाता हूं। तो ईश्वर है वो कौन है? माया की उपाधि वाला है इसलिए मायापति है, मायापति उसका नाम जगत कारण है और कारण है इसलिए वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान इसलिए कर्म फल का फल देने वाला कर्म फल दाता है और कर्म का अध्यक्ष है और ईश्वर सर्वदेशी है सब जगह में है और ईश्वर उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला है। ये तत्पद जो है उसका वाच्यार्थ ईश्वर है, इसकी बात मैंने बताई। अब जो त्वम पद का वाच्यार्थ है वो कौन है? वो जीव है। तो देखो कैसा विरोध है, उसके बारे में हमने कहा माया की उपाधि वाला है, इस जीव के बारे में कहेंगे वो अविद्या की उपाधि वाला है, वो मायापति है और ये अविद्याग्रस्त है, ये विरोध दोनों को हो गया। अच्छा वो क्या है? उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला है और ये कैसा है? स्वप्न जागृत और सुषुप्ति तीन अवस्था वाला जीव है, अविद्या की उपाधि वाला है। वो कौन है? ईश्वर सर्वज्ञ है। ये कौन है? अल्पज्ञ है। और वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। ये कैसा है? अल्पशक्तिमान है। इसके पास क्या है? अल्पज्ञत्व। उसके पास क्या है? सर्वज्ञत्व। ईश्वर कैसा है? स्वतंत्र है। जीव कैसा है? पराधीनत्व है। और ये जीव है, ये परिच्छिन्न है देश और काल से, और ईश्वर है देश काल से मुक्त है। ये दोनों में विरोध हो गया। तो जो विरोधी है उसका क्या करना है? त्याग करना है। माया और अविद्या की उपाधि का त्याग, उपाधि निकल जाएगी तो निरुपाधिक तत्व तो एक ही है, और वो निरुपाधिक तत्व उपाधि से मुक्त जो सच्चिदानंद आत्मा है वो मैं हूं। ऐसा तत्वमसी महावाक्य के द्वारा हमको उपदेश दिया जाता है, और ऐसा ही उपदेश ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। तो ये मैंने आपको जहत अजहत लक्षणा के द्वारा महावाक्य समझाने का प्रसंग समझाया। और ऐसे महावाक्यों के द्वारा ऐसे जो गुरु हमको जताते हैं, बताते हैं कि मैं कौन हूं, वह दक्षिणामूर्ति स्वरूप सदगुरु को ये मेरा नमन है। श्री दक्षिणा मूर्तये नमइदम, ऐसा करके हम प्रणाम करते हैं। और इसके बाद महावाक्य समझने के बाद अब हम नए मंत्र के ऊपर जाएंगे। भाई लाइट बंद करो जरा। मंत्र 4,
नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चाक्षुराधिकरण द्वारा स्पन्दते जानामि तमेव भान्तम् अनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् दक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये।
आपके सामने देख रहे हैं एक मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी के घड़े के भीतर कई छिद्र हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दर मतलब उदर, ये घट है, घड़ा है, उसका पेट है गोल, और उसके घड़े के पेट में उदर में कई छिद्र हैं, और एक एक छिद्र से प्रकाश निकलता है, और जो पदार्थ के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो चीज हमें दिखाई देती है। देखिए साहब, आप घड़े को भी देखिए और मेरे सामने भी देखिए, घट का प्रकाश मेरे ऊपर भी कहीं आता है, ठीक है, देखिए यहां पर, ठीक है। तो ऐसे उजाला इसलिए थोड़ा कम समझ में आता है, मगर एक एक छिद्र से जो प्रकाश का किरण निकला, वो प्रकाश का किरण जिसके ऊपर पड़ता है वो पदार्थ का हमें ज्ञान होता है। छिद्र तो अनेक है, प्रकाश के किरण तो अनेक निकलते हैं, मगर अंदर जो दीपक है ने वो अनेक नहीं है, दीपक तो एक ही है। ये अब कहां गए छिद्र? गायब हो गए। क्यों? वो दीपक था तो छिद्र में से प्रकाश आता था, अब ये दीपक फिर से प्रज्वलित हो गया। अरे दीपक प्रज्वलित होने से, दीपक एक होने से भी अनेक छिद्रों के द्वारा अनेक किरणें निकली हैं, और जितनी जितनी किरण निकली उसने जिसको स्पर्श किया उसका हमें ज्ञान होता है। अब लाइट कर दो भाई, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। घट के अंदर छिद्र अनेक हैं, एक नहीं अनेक छिद्र हैं। दीपक तो एक ही है। ऐसे ही ये मिट्टी का घड़ा है और ये बैठा आपके सामने गिरे हुए कपड़े के अंदर हार्ड मास चाम का घड़ा है। इसके अंदर भी एक ही दीपक है, इसके अंदर भी भीतर भी एक ही है, स्वयं ज्योति जिसको कहते हैं, आत्म ज्योति जिसको कहते हैं, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं। ज्योति तो एक ही है, इसमें अनेक छिद्र हैं, ऐसे इसमें भी अनेक छिद्र हैं। दो छिद्र आंख के हैं, दो कान के हैं, दो नाक के हैं, मुंह भी है, पर समझिए अनेक कहां हैं। रे कितने कितने बाल हैं यहां, जितने जितने बाल हैं इतने इतने छिद्र हैं, ना होते तो पसीना निकल के बाहर आता ही नहीं। समझते हो, यहां नाना छिद्र घट उदर स्थित महादीप प्रभावास्वरम, अंदर दीपक एक ही है और वो दीपक जब प्रज्वलित होता है तो छिद्रों से प्रकाश बाहर आता है। सबसे पहला मंत्र हमने देखा निजांतरगतम, जगत भीतर होते हुए भी हमें बाहर दिखता है, और प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् पहले मंत्र में बात आई थी। जब ज्ञान होता है उस समय पर अद्वय का साक्षात्कार होता है। दूसरे मंत्र में देखा था सत ब्रह्म है, वो ईश्वर है और ईश्वरिक बीज है, और ईश्वर रूपी बीज से ही जगत रूपी वृक्ष बाहर आता है। और जगत रूपी वृक्ष की बात कहां पर की गई भगवद गीता में, पंद्रहवें अध्याय में, ऊर्ध्वमूल अदर्शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, संसार वृक्ष की बात बताई गई। मर संसार वृक्ष बाहर आया उसका बीज कौन, तो ईश्वर। दूसरे मंत्र में वो समझा, तीसरे मंत्र में हमने तत्वमसी महावाक्य का उपदेश समझा, और असी पद के द्वारा जो समन्वय किया गया था उसकी बात और जिक्र किया। चौथे मंत्र के अंदर ये जो चल रहा है अभी, इसके अंदर महान सिद्धांत है प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ परसेप्शन अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। और शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत ही अच्छा घट का दृष्टांत देकर ये बात हमें समझाने का प्रयास किया है। आज मैं समझाता हूं कैसे हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसेप्शन कैसे होता है, परसेप्शन ऑफ फॉर्म यानी आकार का रूप का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ स्मेल नाक के द्वारा गंध सुगंध का प्रत्यक्षीकरण, ऑडिटरी परसेप्शन कान के द्वारा शब्दों का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ टेस्ट जिह्वा के द्वारा स्वाद का प्रत्यक्षीकरण, और टच सेंसेशन और परसेप्शन स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा स्पर्शानुभूति का प्रत्यक्षीकरण। तो कहते हैं ये होता कैसे है, साइंस की बात तो मैं कल परसों आपको समझा चुका हूं, समझाता हूं खाली याद करवा देता हूं कि प्रकाश की किरण जो सरफेस के ऊपर जाती है और हर सरफेस के अंदर एक सामर्थ्य है, ईच एंड एवरी सरफेस हैज कैपेसिटी टू रिटर्न एंड रिबाउंड एन अमाउंट ऑफ लाइट, और वो सरफेस के ऊपर से जो लाइट परावर्तित होकर वापस आती है वो हमारी आंख में रेटिना में जाती है। और रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कोन्स, शंकु कोष और सली कोष ऐसे कोष हैं जो ये सेंसेशन जो प्रकाश से किरण वापस आए उसको ग्रहण करते हैं। कई कोष ऐसे हैं कि दे कैन परसीव ओनली फॉर्म, आकार का ही प्रत्यक्षीकरण करते हैं। कई कोष आंख में ऐसे डेप्थ का परसेप्शन करते हैं। कई कोष ऐसे हैं मात्र कलर रंग का ही प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसलिए हम किसी को कहते हैं ना ही और शी इज कलर ब्लाइंड, पता है ना। और जिसको पायलट की नौकरी चाहिए ना उसको सबसे पहले कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, उसकी टेस्ट होती है। क्यों? वो कलर ब्लाइंड होगा ना तो सफेद रनवे और बाजू में ग्रास वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा और भिड़ा देगा, प्लेन को कहीं से कहीं उतार देगा। समझ में आता है ना? तो ये सब परसेप्शन होता है बपराश। तो मैं समझाना चाहता हूं ये क्वेश्चन है, ये सबके पीछे एक ऑप्टिक नर्व है और सब मैसेज को लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के छाल में जहां पर एक दृष्टि संवेदन केंद्र है, विजुअल सेंटर, वहां पर संदेशा जाता है और वहां पर संदेशा जाता है हम कहते हैं हे गधा है, लाल है, पीला है, समझते हैं। मगर ये विज्ञान की बात है, विज्ञान ऐसे प्रत्यक्षीकरण को समझाता है। अच्छा साहब मेरे सामने देखिए, क्यों मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए नहीं, मैं जो बात कहता हूं वो मेरे सामने देखकर सुनिए। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पड़ता है? रेटिना के ऊपर, नेत्र पटल के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पढ़े लिखे लोगों, अच्छा देखो, आप मुझे देख सकते कि नहीं देख सकते? देखते कि नहीं देखते? क्यों देखते हो? मेरा प्रतिबिंब आपकी आंख में पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो मैं कहां हूं, आपके आंख में हूं या बाहर हूं? बाहर नहीं हूं, आपके भीतर हूं, आंख में हूं। अच्छा देखना, अभी देखना साहब, आप मुझे देख सकते हां ये कहो या ना कहो, देख सकते कि नहीं? अच्छा अब एक आंख बंद करिए, सब लोग करो एक आंख बंद करो, अब बोलो मैं दिखता हूं नहीं दिखता हूं? अब दूसरी आंख बंद करो, दूसरी आंख से देखो, दिखता हूं नहीं दिखता हूं? तो मेरे प्रतिबिंब कितने पड़ गए? दो आंख में कितने प्रतिबिंब पड़े? दो। अरे एक इसमें पढ़ा, इसमें पढ़ा ने, दोनों आंख से देखा ने, तो मैं एक हूं या दो हूं? दो। अरे दो आंख में दो प्रतिबिंब नहीं है? साहब दो आंख में प्रतिबिंब तो दो पड़ते हैं, मगर जो ऑप्टिक नर्व है ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती फिर मिल जाती है, आगे जाके एक हो जाती है। समझ आता है? तो जो प्रत्यक्ष संवेदन दो होते हैं, टू सेंसेशन बट परसेप्शन इज ओनली वन, क्योंकि दृष्टि संवेदन केंद्र एक ही है और वो ऑप्टिक, दोनों आंख के ऑप्टिक नर्व आगे जाके एक मिल के आगे चली जाती है। तो दो प्रतिबिंब होने से भी एक ही चीज दिखाई देती है। तो द्वैत वाले उनको समझाओ कि दो दिखाई देने वाली चीज भी दो तो नहीं होती है, एक ही होती है, पर वो नहीं समझने वाले। वो कहते मैं भक्त हूं और मूर्ति में भगवान है। अब उनको कौन नहीं, हम नहीं समझा सकते। ठीक है, देखिए ये मैं आपको समझा रहा था, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन अकॉर्डिंग टू साइंस। हमारे शास्त्र जो परसेप्शन का, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत समझाते हैं वो ऐसा नहीं। अब वेरी अनफॉर्चुनेट कि मेरे पास साधन नहीं यहां पर, ये जब चीज मैं सैन फ्रांसिस्को में समझाता हूं तो मेरे पास कंप्यूटर वगैरह मेरे पास होता है और मैं जो समझाना चाहता हूं प्रोजेक्ट करके समझाता हूं, मगर मैं मेरे सामने देखोगे तो मैं जो समझाता हूं वो आपको प्रयत्न करूंगा कि आप समझ सकें। होने चाहिए साधन और प्रेमपुरी जैसी संस्था ये सब कर सकती है, ये गिरीश भाई चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए साधन मुझे दिए जाएंगे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो सैन फ्रांसिस्को में मेरे को सब वो लोग ने साधन जुटा के दिए और मैं सबसे पहले वहीं समझाया, आपको समझाता हूं। मैं बैठा हूं, ये सामने घड़ा है, मगर ये घड़ा है ऐसा ज्ञान बाहर नहीं होता है। समझ में आता है? ये घड़ा है ऐसा ज्ञान मुझको भीतर होता है। अब कैसे होता है अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स, ये घट है, एक दृष्टांत देता हूं और इसके ऊपर से आप सब चीज का ज्ञान कैसे होता है समझ जाएंगे। तो आप कृपा करके मेरे सामने देखिए, मैं यहां बैठा हूं, ये घड़ा तो नहीं कहता है कि मैं घड़ा हूं, क्योंकि तो जड़ है ना। पूर्वस जो समझ मैंने बताई थी उसके संदर्भ में समझना, ये घट जड़ है, ये तो नहीं बोलता है कि मैं घड़ा हूं, मैं मिट्टी का हूं, मैं गोल हूं, मेरा पेट बड़ा है, मेरे पेट में छिद्र है, नाना छिद्र घटो दरस्थित महा, वो नहीं कहता है। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चला मिट्टी का घड़ा है, इसका पेट गोल है, इसमें छिद्र है, घड़ा नहीं बोलते हुए भी मैं जानता कैसे हूं, ये बात मैं समझाता हूं। लुक एट मी नाउ, मैंने देखा यहां पर, तो अब तुलना करना, जैसे ये मिट्टी का घड़ा है, ये चमड़े का घड़ा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर स्वयं ज्योति आत्मा है जो चैतन्य स्वरूप है जिसको हम चित्त कहते हैं। देयर इज नथिंग बट अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस।